ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ।
ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं और हम सबको बाबा का प्यार अनुभव होता है, क्योंकि बाबा जब स्वमान देते हैं तो दिल के अंदर ये भावना आती है कि भगवान कितने उदार, और उनका जो सागर जितना प्रेम है वो जैसे छलक जाता है हमारे सामने। उनके जो बोल हैं उनके द्वारा जैसे उनका दिल हमारे सामने प्रकट हो जाता है। बाबा के दिल में क्या है, जब कोई अपनी अंदर की बात सुनाता है तो बहुत करके यही कहता है, देखो भाई मैंने अपना दिल तुम्हारे सामने खोल के रख दिया है। तो बाबा के दिल में हम बच्चों के लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है, कितना असीम प्रेम है। वो जब बाबा इतने ऊंचे ऊंचे शब्द बोलते हैं ना तो आत्मा को टच होता है, अनुभूति होती है। तो प्यारे बाबा ने इतनी लंबी माला दी है हमको स्वमानों की, भक्ति में हमने भगवान की माला जपी और अब भगवान हमें इतने ऊंचे ऊंचे मान स्वमान देते हैं। बहुत लंबी माला है उनकी। तो अभी हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाने के लिए इस बात पर चर्चा करेंगे कि सारे दिन में सुबह से लेकर के रात्रि तक हम कौन से स्वमानों का अभ्यास करें, जिनका अभ्यास करते करते हम डिटैच भी रहें और संपन्नता के नज़दीक भी पहुंच जाएं। अभी तो हमारी एक ही चिंता है, बाकी तो सब चिंताएं छूट गई, लेकिन एक बची है, वो ये है कि जल्दी से संपन्न और संपूर्ण बने। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा है, श्रीमत दी है, बहुत मीठी प्यार भरी। बाबा ने कहा बच्चे उठते ही ऐसी अनुभूति करो कि मैं ब्रह्मलोक से आदि काल में आत्मा अवतरित हुई हूँ। जैसे बाबा ने कहा कि सतयुग में ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले अवतरित होगी, वो आदि काल का आदि अवतरण होगा, जन्म होगा। तो ऐसे ही अमृत वेला भी आदि काल है। तो हम क्या करते हैं, उस आदि काल में उतर करके नीचे आते हैं। किस लिए, भक्ति मार्ग में कितने अवतार उतर उतर करके आए, बाबा ने भूतों के नाम गिनाए हैं, वो सब क्यों आए। कहते हैं परिस्थिति पुरुष को जन्म देती है। तो ड्रामा में उनका पार्ट था, जैसे महात्मा बुद्ध करुणा के अवतार बन करके आए, इसी प्रकार से क्राइस्ट प्रेम के अवतार बन के आए, इसी तरह से शंकराचार्य ने लोगों को अनासक्त भाव और वैराग्य सिखाया, मोहम्मद ने मर्यादाएं सिखाई। तो ऐसे ही हम भी अमृत वेले अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी धर्म की स्थापना करनी है, मर्यादाओं की स्थापना करनी है, मूल्यों की स्थापना करनी है। और जब हम अवतरित होते हैं तो प्रकृति को भी कितनी खुशी मिलती है, उसको लगता है कि कोई मुझे राहत देने वाला जैसे आया है। हमारे वाइब्रेशंस से जैसे प्रकृति के कण कण में एक लहर दौड़ती है, और हमें भी कैसा लगता है कि हम अपनी संपूर्ण शक्तियों से इनको सींच दें, हमारे पास जो भी कुछ है उनसे इन प्यासी प्रकृति को, प्यासी आत्माओं को दे दें, भरपूर कर दें, तृप्त कर दें। तो ये हमारा प्रथम स्वमान है, हम कौन, हम कहाँ से आए, किस उद्देश्य से इस रंगमंच पर आए। उसके बाद प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे, जब आप इस देह में अवतरित हो गए तो अब देह का कार्य व्यवहार वो सब भी करना पड़ेगा, तो उस समय क्या स्मृति रखेंगे, कौन सा स्वमान लेंगे। ये मेरा चेतन मंदिर है और मैं इस मंदिर में विराजमान चेतन मूर्ति हूँ। कहती हैं मंदिर कितना भी सुंदर हो लेकिन उसमें मूर्ति ना हो तो किसी काम का नहीं। तो मैं चैतन्य मूर्ति इसमें विराजमान हूँ। कौन सी मूर्ति? जिसके गुणों की माला स्वयं भगवान भी जपते हैं, जिसके गुणों की महिमा स्वयं भगवान भी करते हैं, वो अमूल्य मूर्ति मैं इस मंदिर में विराजमान हूँ। तो ये हमारा दूसरा स्वमान हो गया, इसको लेके ही हम इस शरीर के कार्य व्यवहार पूरे करेंगे। और फिर जब हम बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, तब फिर एक तीसरा बहुत अच्छा स्वमान है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुझे कौन पढ़ाता है? किसी बच्चे का टीचर अगर गोल्ड मेडलिस्ट हो तो वो घर में आके सुनाता है कि मेरा टीचर गोल्ड मेडलिस्ट है। किसी बच्चे का टीचर अगर कहीं बाहर से आए तो उसको भी नशा चढ़ता है कि मेरा टीचर तो विदेश से मुझे पढ़ाने आता है। लेकिन बाबा कहते हैं देखो आपका टीचर कौन है और कहाँ से पढ़ाने आता है और क्या पढ़ाता है और उस पढ़ाई की प्राप्ति क्या है। आपका टीचर तो कितनी दूर से आता है, स्पेशल। बाबा कहते हैं एक एक बच्चे को मैं स्पेशल पढ़ाता हूँ। हर एक बच्चे को ये अनुभूति होती है, भले वो सबके बीच में पढ़ता है लेकिन अनुभूति ये होती है कि स्पेशल मेरा टीचर है, मुझे पढ़ाने आया है, मेरा भाग्य बनाने आया है। और बाबा ने ये भी कहा है कि प्राप्ति कितनी भारी, अगर एक भी महावाक्य, एक भी रत्न मिस हो जाए तो कितनी सारी कमाई गई। तो ये तीसरा स्वमान है। और उसके बाद जब हम दिन भर में कर्म क्षेत्र पर उतरते हैं तो उसके लिए तो बाबा ने बहुत सारे स्वमान दिए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन एक जो बहुत ही अच्छा स्वमान है, बहुत सरल है, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे मैं करावन हार हूँ, करण करावन हार हूँ, ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा भी करावन हार है, करण हार भी है। लेकिन करावन हार किससे करवाती हैं? इंद्रियों से काम करवाती हैं। सारा दिन की दिनचर्या में आत्मा को कितने सारे काम करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई है कि आप करावन हार बन करके रहो, इंद्रियां कार्य करती रहेंगी। जैसे मम्मा के जीवन की मिसाल सुनाती हैं, एक बार वो अनाज साफ कर रही थी तो बच्चों ने देख लिया कि मम्मा अनाज साफ कर रही है, तो बच्चे दौड़े दौड़े आए, मम्मा मम्मा आप क्यों बैठे हो, हम करेंगे हम करेंगे। तो किसी ने थाली को इधर से पकड़ा, किसी ने उनके हाथ की थाली को दूसरी तरफ से पकड़ा, और मम्मा अपने उसी योग युक्त अवस्था में बैठी रही। फिर धीरे से कहा कि मैं तो अनाज साफ कर ही नहीं रही थी। तो कहा मम्मा इतनी देर से तो आप बैठे हो, आप अनाज ही तो साफ कर रहे थे। कहा नहीं, ये तो मेरे मैंने नौकरों को काम दिया हुआ था, मैं तो बाबा के पास बैठी थी। तो ये है करावन हार की स्थिति। और वैसे भी आप देखो, जो मालिक होता है, जो ऑफिसर होता है, नौकरों को काम में लगा के नौकरों के पास थोड़ी बैठ जाता है। अब किसी नौकर को कहा कि तुम झाड़ू लगाओ तो उसके पास ही बैठा रहेगा क्या? फिर क्या फायदा नौकर को काम देने का? फिर तो ऐसा ही हो गया जैसे खुद ही कर रहा है, मेहनत तो लगेगी ना। किसी को कहा भोजन बनाओ तो उसके पास ही थोड़े बैठा रहेगा, उसको काम में लगा के वो तो अपने दूसरे काम करेगा, तब तो उसको फायदा है ना सर्वेंट रखने का। तो बाबा भी कहते हैं जिन कार्यों में बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है तो उन कार्यों को, इन इंद्रियों को सौंप करके बुद्धि को बाबा में लगाओ, रेस्ट में छोड़ दो, तो काम भी होता रहेगा और हम रेस्ट में भी रहेंगे। यही तो कमाल की बात है ना, काम भी हो गया और हम थके भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो रेस्ट में थे, काम तो हमारे नौकर कर रहे थे। तो ये जो करावन हार की स्थिति है कर्म करते समय है, तो ये बहुत प्रैक्टिस की चीज, लेकिन प्रैक्टिस हो जाने के बाद मजा बहुत आता है। क्योंकि कितना भी अपन कार्य कर लें फिर भी न्यारे प्यारे निश्चिंत और अथक बने रहते हैं। दूसरा, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे कर्म योगी फरिश्ता बन के रहना, ये तो बाबा ने अपने को ड्रिल भी दी हुई है। तो कर्म योगी फरिश्ता माना क्या? कर्म से तो अपन छूट नहीं सकते हैं, कर्म तो अपने को करना है, लेकिन कर्म करते हुए भी योग युक्त फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात डिटैच, और योगी माना बाबा की स्मृति। तो उसमें बाबा ने दो तीन बातें कर्म के संबंध में बताई हैं। एक तो बाबा कहती हैं कि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे सामने दो एस्पेक्ट हैं, एक है परमार्थ और एक है व्यवहार, एक है आत्मनिर्वाह और एक है शरीर निर्वाह, एक है लौकिकता को निभाना और एक है अलौकिकता पे भी खरा उतरना। तो कई बार क्या होता है, मूंझ जाते हैं, पहले ये वाला करें कि ये वाला करें, लेकिन बाबा ने बड़ा स्पष्ट हम बच्चों को बताया है। कहती है परमार्थ में व्यवहार समाया रहता है। अगर आप परमार्थ को महत्व देंगे, परमार्थ माना परम अर्थ, तो परम पिता के लिए जो किया जाता है वो परमार्थ है, उसकी याद में जो किया जाता है, उसको निमित्त मान करके जो किया जाता है वो परमार्थ है। तो जब हम उस परम को आगे रखेंगे तो हमारा व्यवहार ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। पहले शरीर निर्वाह या आत्मनिर्वाह, तो उसमें भी बाबा ने कहा पहले आत्मनिर्वाह करो। आत्मनिर्वाह माना आत्मा का ज्ञान से पोषण करो, तो शरीर निर्वाह की शक्ति और युक्ति ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और पहले लौकिक या अलौकिक, तो उसमें भी बाबा ने कहा है, जो बाबा ने अलौकिक जीवन के नियम दिए हैं उनका पालन करते हुए लौकिक जीवन को निभाओगे तो दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन केवल पलड़ा लौकिक की तरफ झुक गया तो लौकिक भी हाथ नहीं आएगा और अलौकिक तो हाथ आएगा ही नहीं। तो लौकिक दुनिया में रहना, संबंध निभाना, धन कमाना, ये सब आवश्यक है, लेकिन इसकी भी विधि बाबा ने बताई है और विधि से सिद्धि मिलती है। तो उसमें हम हल्के भी रहती हैं और हमें जो चाहिए हमारी वो मनोकामना भी पूर्ण होती है। दूसरा, कर्म के संबंध में बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि जिन आत्माओं के साथ हम संपर्क में आते हैं, भले ही अपन परिवार में रहते हैं, कहेंगे भैया मेरा तो कर्म बंधन का नाता है, लेकिन बाबा ने कहा उसको कर्म बंधन का नाता मत समझो। अगर आपके मन में ये भाव है कि ये कर्म बंधन का नाता है तो वो बंधन और अधिक कड़ा हो जाएगा। लेकिन आप ये समझ करके उस आत्मा के साथ डीलिंग करो कि ये सेवा का संबंध है, ये भी सेवा में है, मैं भी सेवा में हूँ, हम दोनों ही सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा के निमित्त, ये भी सेवाधारी, मैं भी सेवाधारी, तो ये कर्म बंधन नहीं है लेकिन ये सेवा का संबंध है। तो आपस के रिश्तों को सेवा के संबंध की दृष्टि से देखो तो उन रिश्तों में क्लेश खत्म हो जाएगा और सचमुच वो रिश्ते परमात्मा की याद दिलाने के निमित्त बन जाएंगे। एक बाबा ये भी कहती हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो कर्म का संन्यास करते हैं, वो कहते हैं कि कर्म करेंगे तो बंधन में बन जाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो रात दिन कोल्लू के बैल की तरह कर्म में ही जुटे रहते हैं। वो कहते हैं हम तो कर्म को ही भगवान मानते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं, बस काम करो, कमा के खाओ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन जो पहली बात है वो भी बाबा कहते हैं ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म का संन्यास हो ही नहीं सकता। और अगर कोई कमाने का संन्यास कर भी ले तो खाने का संन्यास तो कर नहीं सकता। और जो दूसरा एस्पेक्ट है कि भाई बहुत काम करो, हर घड़ी काम ही काम करते रहो, तो उसमें भी जो इस तरह से लगा रहता है ना, उस वो वास्तव में शांति अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि कर्म के दौरान राग द्वेष ईर्ष्या थकान चिड़चिड़ापन तेरा मेरा बहुत सारी बातें उस पर हावी होती हैं। वो कर्म करता तो है लेकिन थकान के साथ, चिड़चिड़ेपन के साथ, नेगेटिव चिंतन के साथ। तो बाबा ने हम बच्चों को इन दोनों के बीच का मार्ग बताया है, और वो कौन सा है? कर्म योगी, कर्म का संन्यास भी नहीं करना और कर्म में फंसना भी नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए भी डिटैच रहना है। तो उसमें क्या होगा? कहते हैं हथकारवल और दिल करतारवल, लोक भी सुहेला और परलोक भी सुहेला। फिर सारा दिन में हम अनेक आत्माओं के संपर्क में आते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे अपनी गुण मूर्त स्टेज बना करके रखो। अब गुणों के संबंध में बाबा ने हमको बहुत सारे स्वमान दिए हैं, जैसे बाबा कहते हैं आप उदार चित्त आत्मा हैं, या बाबा कहता है आप महीन बुद्धि आत्मा हैं, या बाबा कहता है आप सरल चित्त आत्मा हैं। अब ये बहुत बड़े स्वमान हैं गुणों के संबंध में, और हमको कार्य व्यवहार में गुणों के साथ एक दो के संपर्क में आना है। तो जैसे हम उदारता के स्वमान को लेते हैं, बाबा कहती हैं बड़ी दिल, साफ दिल और सच्ची दिल, इसको कहती हैं उदार दिल। एक व्यक्ति होता है जो मांगने से भी चीज नहीं देता, दूसरा होता है जो मांगने पर ना नहीं करता, और तीसरा होता है जो बिना मांगे ही सब कुछ लुटाता रहता है। तो उदार दिल किसको कहेंगे? जो बिना मांगे ही दूसरे की आवश्यकता को देख करके, और दूसरे को तो पता भी नहीं है कि मेरी ये आवश्यकता है, लेकिन उदार दिल उससे भी ऊंची प्राप्ति करा देता है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया, हमारा एक गीत है ना, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया। तो हमने थोड़े बाबा को कहा था, भक्ति में किसी ने कहा था कि हमको देवता बना देना, हमको स्वर्ग की बादशाही दे देना, हमको अपने दिल तक पर बिठा लेना। तो बिना मांगे बाबा ने क्या किया? बहुत कुछ दिया। अब कई ऐसे होते हैं जो दे देते हैं और देने के बाद फिर थोड़ा एहसान भी जताते हैं, देखा मैंने दिया ना, अगर मैं ना देता ना तो तेरे को ये चीज मिलती ही नहीं। लेकिन बाबा ने तो हमारी नजरें भी नहीं झुकवाई, दिया और देकर के क्या कहा, ये तो तुम्हारी ही चीज थी, ये तो तुम्हारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बच्चों आप अपने अधिकार को प्राप्त करो। तो ये है उदारता, इतना दिया और देकर के भी इतने निरहंकारी। तो हमको क्या करना है, इस स्वमान की स्मृति में रहना है, मैं उदार दिल आत्मा हूँ, मैं उदार दिल आत्मा हूँ। भक्ति में देवताओं को कहते हैं ना, आप बड़े उदार हो, कृपा कर दो, दया कर दो। तो ये किसकी महिमा है, हमने इस समय प्रैक्टिकल में किया है तभी तो महिमा बनी ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आप सरल चित्त आत्मा है। जो सरलता है ये सारे गुणों का सार है। सारे गुण जब आत्मा में आ जाते हैं तब वो सरल चित्त बनती है। सरल किसको कहते हैं, जैसे कोई मार्ग होता है उसको अपन कहते हैं भाई ये मार्ग बड़ा सरल है, इस मार्ग पे चलना बड़ा सरल है। क्यों कहती हैं, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। एक मार्ग होता है पहले बाएं जाओ फिर दाएं जाओ फिर थोड़ा ऊंचाई आएगी उसके बाद फिर थोड़ा नीचे जाना उसके बाद फिर मुड़ना, तो कैसा मार्ग हो गया, टेढ़ा मेढ़ा। और एक होता है सरल, भाई सीधे सीधे चलते जाओ। तो सरल चित्त का अर्थ है जिसके जीवन में टेढ़ापन नहीं है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गमी, अभी अभी खुश वो ऊपर चढ़ गया, अभी अभी बिल्कुल नीचे आ गया, अभी अभी अपने आप को बहुत अभिमान में ले आया, अभी अभी फिर अपने को अपमान में ले आया। तो ये जो उतार चढ़ाव हैं इनसे हमारा चित्त मुक्त है, उसको कहते हैं सरल चित्त। दूसरा, जैसे सरल मार्ग है, उबड़ खाबड़ नहीं है, गड्ढे नहीं है, कहीं ऊंचाई निचाई नहीं है, चलने वाला आंख बंद करके भी चले ना तो भी ठोकर ना लगे। तो जिस व्यक्ति के चित्त में पुरानी स्मृतियां, पुरानी बातें, दूसरों के भाव स्वभाव, अवगुण, इन सब चीजों के गड्ढे, इन सब चीजों की ऊंचाई निचाई नहीं है, उसको कहते हैं सरल चित्त आत्मा। और क्या कहेंगे, सरल मार्ग है, कहेंगे इसमें कोई कांटा नहीं है, कोई झाड़ी नहीं है, आपका कोई कपड़ा नहीं उलझेगा है। इसी प्रकार से सरल चित्त व्यक्ति जो न तो खुद किसी में फंसे और न किसी को अपने में फंसाए, एक एक बल एक भरोसे अपने मार्ग पर बढ़ता जाए, उसको कहेंगे सरल चित्त आत्मा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये स्वमान दिया है, हम कौन है, हमारा चित्त बिल्कुल सरल है जिसमें किसी के लिए कोई भाव स्वभाव नहीं है, है? जैसे स्वच्छ जल होता है एकदम, कोई कंकर नहीं, कीड़ा नहीं, कोई बाल नहीं, कोई तिनका नहीं। तो अंदर झांक के देखते हैं तो आत्मा एकदम शाइनिंग स्टार की तरह नजर आती है। किसी व्यक्ति वस्तु वैभव का आकर्षण नहीं, किसी का भाव स्वभाव नहीं, किसी की पुरानी स्मृति नहीं, किसी के प्रति कोई प्रेजुडिसेस नहीं, चित्त साफ, तो उसको कहेंगे सरल चित्त, मोल्ड होने वाला चित्त, जैसा समय जैसी परिस्थिति उसी अनुसार ढल गया मुड़ गया। इसी तरह से बाबा कहते हैं, बच्चे आप बच्चे त्रिकालदर्शी हो, ये भी हमारा बहुत बड़ा स्वमान है। अब एक एक स्वमान की जब गहराई में जाते हैं ना तो कितने राज ओपन होते हैं। जैसे कहते हैं ना, केले की बात बात में बात, ऐसे बाबा की केले के पात पात में पात, ऐसे बाबा के एक एक शब्द में कितनी सारी गहराई छिपी रहती है। तो बाबा कहते हैं आप त्रिकालदर्शी आत्मा हैं। एक होता है एक कालदर्शी, दूसरा होता है दो कालदर्शी, और तीसरा होता है त्रिकालदर्शी। सबसे अच्छा कौन, बाबा कहते हैं आप तीनों कालों को सामने रख करके कर्म करो, त्रिकालदर्शी बन करके कर्म करो। अब एक कालदर्शी व्यक्ति कौन होता है, जो केवल वर्तमान के बारे में सोचता है। मान लो किसी से कोई गलत काम हो गया तो कहेगा भाई अभी अभी मेरे को बचा ले, थोड़ा उसके आगे झूठ बोल देना, थोड़ा उसके आगे ऐसे कह देना मैंने नहीं किया, तो बस बस अभी अभी मुझे बचा ले। तो वो केवल वर्तमान का सोचता है कि मैं बच जाऊं किसी भी तरह से, लेकिन एक होता है दो कालदर्शी, वो भविष्य के बारे में भी सोचता है कि अगर मैंने ये गलत किया और अभी ये मेरी बात दब गई तो कल को फिर मेरे से गलती हो जाएगी, मेरा तो संस्कार बन जाएगा। इसलिए भाई जिसको बताना हो बता दो और जिसको सावधानी देनी हो मेरे को सावधानी दे दो ताकि मैं इस गलती को रिपीट ना करूं, कल दोबारा ना हो। तो वो आज का भी सोच रहा है और आने वाले कल का भी सोच रहा है, कल भी मेरा अच्छा गुजरे, उसको कहते हैं दो कालदर्शी। और एक तीसरी आत्मा है जिसको हम कहते हैं त्रिकालदर्शी। तो वो आत्मा क्या करती है, वो कर्म करती है, तो वो तीनों कालों की स्मृति में है। मैं कौन हूँ, मैं वही देव आत्मा हूँ, वही परमात्मा के बहुत समीप परम धाम में बैठने वाली आत्मा हूँ। तो जब कर्म इस स्मृति में करती है तो गलत होता ही नहीं है, कर्म करने से पहले ही वो स्मृति स्वरूप है, मैं कौन हूँ, अब मुझे क्या करना है और फिर मेरा भविष्य क्या है। तो बाबा कहते हैं एक कालदर्शी से तो बहुत मिस्टेक होंगी, दो कालदर्शी से भी होंगी, लेकिन जो त्रिकालदर्शी के स्टेज में होगा उसे मिस्टेक होगी ही नहीं। इसी तरह से बाबा ने हम बच्चों को एक स्वमान दिया है कि आप विघ्न विनाशक है, निर्विघ्न है, समाधान स्वरूप है, ये सब एक ही मीनिंग वाले स्वमान है। समस्या आपके आगे टिक नहीं सकती, आप विजयी हैं, कोई भी बात आपकी खुशी को ले जा नहीं सकती, बातें आएंगी लेकिन ऐसे ही जैसे मिक्की माउस का खेल पर्दे पर चल रहा है तो आप उसको देख देख करके आनंदित होंगे। खेल देख के क्या होता है, खुशी होती है, मनोरंजन हो जाता है, तो माया भी हमारे लिए क्या बन जाती है, मनोरंजन की चीज बन जाती है। हम कहते हैं चलो और खेल दिखाओ और खेल दिखाओ। तो जब कोई भी बात आती है उस समय या तो उस बात की स्मृति रहेगी, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, और या हमें अपने विघ्न विनाशक स्वरूप की स्मृति रहेगी कि क्या हुआ क्यों हुआ, नहीं मैं विघ्न विनाशक हूं, मेरे सामने ये जो बात आई है ना ये टिक नहीं सकती है, कैसे टिकेगी, मैं सर्वशक्तिवान का बच्चा। तो ये सारा दिन में बहुत पक्की स्मृति चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो बातें तो आनी शुरू होंगी, और बाबा ने कहा बातें तो अंत तक आएंगी। अगर कोई व्यक्ति निमित्त नहीं बनता है तो प्रकृति निमित्त बन जाती है, प्रकृति निमित्त नहीं बनती है तो कोई ना कोई पॉलिसी किसी की निमित्त बन जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो मन के अनुकूल नहीं होगा, प्रतिकूल होगा, तो क्या करेंगे। अब उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो परिस्थिति आई, आपका समय भी खराब कर गई, आपकी खुशी को भी छीन ले गई और आपको कमजोर भी बना गई, आपका नेगेटिव चिंतन भी चला गई, और दूसरी बात ये होगी कि वो आई और आपने उससे फायदा उठा लिया, आपने कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लो, तो परिस्थिति को भी आपने बहती गंगा बना लिया और अपने हाथ धुलाई कर ली, अर्थात आत्मा की धुलाई कर ली। लेकिन इसके लिए बहुत ऊंची और बहुत शक्तिशाली स्टेज चाहिए, क्योंकि कोई भी बात प्री वार्निंग दे करके नहीं आती, पहले से बता के थोड़े आती है, सावधान होशियार मैं आ रही हूं, अचानक आती है ना बातें, और नई बातें आती हैं जो आपके पास कई बार आ चुकी हैं वो वाली नहीं आएंगी, एकदम नई बात आएगी जिसके बारे में आप बिल्कुल अनुभवी नहीं हैं। एक बार हम किसी शहर में गए थे सेवा करने के लिए, तो वो बिल्कुल शहर के बीच में, मना लोगों की बस्ती के बीच में आश्रम था, आसपास बस्ती थी और किसी के यहाँ शादी हो रही थी, आश्रम के बिल्कुल बाजू के ही घर में शादी थी। तो रात को वो तो बहुत जोर जोर से बजाते हैं गीत और ये और वो सब, बहुत शोर शराबा होता है। तो हम तो सेवा करके लौटे 9:30 बजे, और 10 बजे जैसे बाबा कहते गुड नाइट करो तो उनका तो गीत बजना चालू हो गया। तो हमने सोचा ये तो पता नहीं सुबह 2-3-4 बजे तक चलेगा तो क्या करें, ये तो नींद तो आएगी नहीं, फिर अमृत वेला भी नहीं होगा। तो किसी ने राय दी कि 2-3 किलोमीटर दूरी पे एक दूसरी ब्रांच है तो आप वहाँ चले जाओ। अब रात को 2 ऑटो बदल के हम उस ब्रांच में गए, लेकिन वहाँ तो इससे भी बड़ा मामला चालू था, और वो भी बिल्कुल दीवार के पास। तो हमको ख्याल आया, बाबा कहता है ना परिस्थिति को देख करके भागो मत, परिस्थिति का समाधान करो, सामना करो। तो अब ऐसे थोड़े है कि किसी तीसरी जगह को ढूंढेंगे। तो क्यों किया था ये हमने, इसलिए किया कि भाई हमारा अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो इसका फायदा उठाते, इस बैती गंगा में हाथ धोते, हम ये मान लेते हैं कि अमृत वेला हो गया है, तो ये अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे। तो हम बाबा के कमरे में बैठ गए ये सोच करके कि अमृत वेला हो गया है और अभी बाबा से शक्तियां ग्रहण करनी है। तो उनके गीत बजते रहे, हमको तो गीतों पे योग लगाने का वैसे ही अभ्यास है, भले वो गीत दूसरे थे लेकिन फिर भी संगीत में इतनी तो ताकत है कि वो बुद्धि को ऊपर ले जाता है। तो लगभग 1:30 बजे तक उनके वो गीत चले, और 1:30 बजे तक हमारा भी अमृत वेला चला। और जब उनके गीत बंद हुए तो हमने उनको दिल से जिगर से बहुत बहुत शुक्रिया कहा। किस लिए? कि उन्होंने अमृत वेले से पहले ही हमारा अमृत वेला बना दिया। अब 1:30 बजे पूरा हुआ, उसके बाद हमने विश्राम किया और सुबह 4 बजे फिर आँख खुल गई। तो फिर क्या किया? फिर अमृत वेला हो गया। तो उनके सदके 2 बार अमृत वेला हो गया, फायदा हो गया ना। तो अब कोई भी परिस्थिति आती है तो पहले से थोड़े बता के आती है कि मैं आ रही हूँ, आप ऐसे करो। लेकिन अगर हम अच्छी अवस्था है, रेडी हैं, हम कहते हैं आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ, हम तैयार हैं, तो जीत हमारी होती है और परिस्थिति हार जाती है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये अभी क्यों हुआ, ये आज ही क्यों हुआ, ये यहाँ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तो समझो वो जीत गई। अब वो आपका आपको देख देख के मनोरंजन कर रही है, वो खुश हो रही है कि अच्छा हुआ मैंने इसको जाल में फंसा लिया और अब देखो ये तड़प रहा है, तो वो हमारा आनंद लेती है, और नहीं तो हम उसका आनंद लेते हैं। तो ये स्मृति पहले से रहे कि मैं विजयी हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं समाधान स्वरूप हूँ, मैं क्यों क्या मैं उलझने वाली नहीं हूँ, मैं बात को देख करके भयभीत होने वाली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा बाप है तो मुझे उसके साथ से निश्चिंत रहना। जैसे कोई बात आती है ना तो आमतौर पे हम क्या कहते हैं, किसी को सुनाते तो आमतौर पे क्या कहते हैं, भाई मैं क्या करूं, आपको पता है, आपको पता है बात इतनी बड़ी थी। तो लोग कहते हैं, भगवान को भी कहते हैं भक्ति में, ओ गॉड हेल्प मी, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, हे भगवान मेरी मदद करो, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम। तो सारा का सारा जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ है, भगवान पर है या बिग प्रॉब्लम पे है? बिग प्रॉब्लम पर है, आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, सो बिग प्रॉब्लम। तो भगवान पे तो है ही नहीं ध्यान, समस्या पे ध्यान है। अब हमको क्या करना है, इसको उलट देना है। कैसे उलटेंगे, कैसे उलटेंगे? अ प्रॉब्लम, You are nothing, I have a big God. तो अब बड़ा कौन बन गया? अब बाबा बड़ा बन गया और बात छोटी बन गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाबा की स्मृति से बात को छोटा कर लो, बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। तो सारा दिन जब हम कर्म करेंगे, कर्म की स्टेज पर है, अभी तो बाबा ने हमको होमवर्क भी दिया है बीच बीच में निराकारी अवस्था और कर्म योगी अवस्था का, तो उससे हमको और बल मिलेगा, हम और अधिक अटेंटिव अलर्ट और जागृत रहेंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जैसे सारा दिन में हम कर्म करते हैं, लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, बहुत हमारे नातेदार रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी उन लोगों के साथ भी हमारा मिलना जुलना चलता रहता है, तो उस समय हम बच्चों को कौन सा स्वमान रखना है। बाबा कहते हैं बच्चे आप विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, आपको हर एक आत्मा के प्रति एक कल्याण का संकल्प जरूर करना है, और वो कल्याण का संकल्प उसको पहुंचता है, टच होता है, भले ही उस समय उसका रिजल्ट ना निकले लेकिन वो हमारी भूमिका बनाता है। तो चाहे जो भी आत्मा मिले उसके लिए क्या कल्याण का संकल्प करेंगे, देखते ही जानी अनजानी चलते फिरते सफर करते हैं, ट्रेन में बहुत आत्माएं मिलती हैं, क्या सोचेंगे। एक होता है हम स्थूल दृष्टि से उसको देखते हैं, ये तो ऐसा लगता है ये तो ऐसा लगता है, लेकिन ये स्थूल दृष्टि तो और लोग भी रख लेते, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको क्या देखना है, बाबा ये आत्मा भी आपके वर्षे की अधिकारी बन जाए, कोई भी है, भले आपकी गाड़ी चलाने वाला है, भले आपको स्टेशन पे कुली नजर आता है, भले आपको कोई ऑफिसर नजर आता है, लेकिन क्या करना है, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कल्याण का संकल्प करना है। और सबसे बड़ा कल्याण का संकल्प क्या है, ये आत्मा भी बाबा आपको पहचान ले, आपके वर्षे के अधिकारी बन जाए, इस आत्मा का भी भाग्य बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने अपने नंबर बना लिए, जितना हम शुभ सोचते हैं हमारे नंबर बनते जाते हैं। जैसे कहती है ना, मेहंदी बांटने वाला आदमी जब मेहंदी बांटता है तो पहले किसके हाथ को लगती है, दूसरे के हाथ को तो बाद में लगती है, पहले बांटने वाले को लगती है ना। और कोई किसी पे सेंट छिड़कता है तो दूसरे आदमी को खुशबू तो बाद में आती है, लेकिन सेंट की पहले खुशबू किसको आती है, छिड़कने वाले को आती है। और कोई किसी के लिए कल्याण की बात सोचता है तो पहले कल्याण किसका होगा, सोचने वाले का होगा, उस तक तो वो बात बाद में पहुंचेगी। और इसका उल्टा भी है, अगर कोई किसी का कल्याण सोचता है तो पहले अकल्याण किसका होता है। हमारे जो वाइब्रेशंस हैं, संकल्प हैं, वो ट्रेवलिंग करते हैं, कहते हैं थॉट्स ऑल्सो ट्रेवल, विचार भी ट्रेवलिंग करते हैं बिना बताए बिना आवाज के। आपने जिसके बारे में जो सोचा होगा ना, वो उसको जाके टच हो जाएगा। आप कहेंगे मैंने तो बोला भी नहीं, किसी को सुनाया भी नहीं, लेकिन ये वाइब्रेशंस, हमारे सोच के जो वाइब्रेशंस हैं उसकी जो तरंगे हैं वो उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। जैसे एक बात सुनाते हैं कि एक बार एक गांव में एक बुढ़िया थी, तो वो कपास की खेती किया करती थी और कपास को गाड़ी में भर करके शहर में लाके बेचती थी। बेचारी को थोड़े से पैसे मिलते थे, तो एक दिन उसने कहा कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, कपास चुनती हूँ, गाड़ी में भरती हूँ और फिर शहर ले जाती हूँ, लेकिन मुझे मिलता क्या है, कुछ भी तो नहीं मिलता, मेरा तो गुजारा भी नहीं होता है। तो उसने क्या किया, रुई की जो ऐसे परतें थी ना, एक फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, तो बीच में थोड़े से पानी के छींटे डाल दिए, लगभग एक किलो एक लीटर पानी, तो बीच की रुई थोड़ी गिल्ली हो गई, ऊपर नीचे की रुई सूखी। उसने सोचा वजन बढ़ेगा, कम से कम इतना पैसा तो ज्यादा मिलेगा, और बहुत खुशी खुशी ऐसे चलती रही। अब वो जिसको रुई देती थी उसको उस दिन अचानक संकल्प आया कि ये बुढ़िया मुझे रोज रुई दे करके जाती है लेकिन मुझे कुछ फायदा तो होता नहीं है। अब वो कॉटन में क्या बचता है, इतना पैसा मैं उसको दे देता हूँ, आगे मैं बेचता हूँ मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं भी क्या करता हूँ। पुराने जमाने में वो जो तोलने का होता था ना, उसके सूत की रस्सी होती थी, कॉटन की ही रस्सी होती थी। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है इसलिए कोई चीटिंग कर नहीं सकता, लेकिन वो उसने क्या सोचा कि मैं इस डोरी को अगर थोड़ा सा चढ़ा लूं तो हो सकता है मुझे थोड़ी सी कॉटन ज्यादा मिल जाए। अब बुढ़िया ने आके रखा वो, और उसने क्या किया, वो थोड़ी सी थोड़ा भी चढ़ा लो ना तो वजन का फर्क पड़ जाता था, तो उसने डोरी को थोड़ा सा चढ़ा लिया था, तो क्या हुआ, बराबर हो गया हिसाब, बुढ़िया को उतना ही मिला। अब उस दुकानदार को किसने बताया कि आज ये ऐसे करना है, उसको आज ही मन में क्यों आया, क्योंकि थॉट्स ऑल्सो ट्रेवल, विचार भी सफर करते हैं। यहां आपने सोचा और सीधा उसी के पास जाएगा जिसके बारे में सोचा, वो गलती नहीं कर सकता। जैसे आप बटन दबाते हो मोबाइल, उसी की रिंग बजती है जिसके आप जिसका आपने बटन दबाया, दूसरे की रिंग बज नहीं सकती। तो ऐसे ही है ये, इसी आधार पे तो बने हैं विज्ञान के जितने भी यंत्र बने हैं, उन्होंने इस मन की शक्ति की नकल करके ही तो इन चीज़ों को बनाया है। और बाबा ये भी कहते हैं कि बच्चे ये चीज़ें इसलिए बनी हैं ताकि आप बच्चों को मन की शक्ति समझना सरल हो जाए। तो आपने जिसके अब जिसका बटन दबाया, जिसकी स्मृति का, वो बात उसी को जाके लगेगी। आप कहेंगे मैंने तो बताया नहीं किसी को, मुंह खोला नहीं, मुंह खोलने की आवश्यकता ही नहीं है, वाइब्रेशन इतना काम करती है। तो हम बच्चों को क्या करना है, सबके प्रति शुभ सोचना है, कल्याण। हमारे सिवाय दुनिया में शुभ सोचने वाला है कौन? कई बार प्रोग्राम होते हैं तो हम हाथ खड़े करवाते हैं, भाई नेगेटिव थॉट्स कितने आते हैं, पॉजिटिव कितने आते हैं, आवश्यक कितने आते हैं, अनावश्यक कितने आते हैं। तो बड़ी ईमानदारी से कई लोग बताते हैं कि पॉजिटिव थॉट तो सारा दिन में आता ही नहीं है, देह अभिमान के वश पॉजिटिव थॉट कहाँ से आएगा। जब लोग सत्संग करते हैं तो लास्ट में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवे। अब ये संस्कृत का श्लोक है, मालूम नहीं किसी को इसका अर्थ आता भी है कि नहीं आता है, तो लोग बस लोगों के साथ मुख से बोल देते हैं। अब इसमें शब्द तो बड़े अच्छे अच्छे भरे हुए हैं, इसमें भरा हुआ है कि भाई सभी सुखी रहें, सबका भला हो, कोई भी सब स्वस्थ रहें, किसी का अहित ना हो, इस तरह की बातें भरी हुई हैं। लेकिन वो भी एक बार बोलते हैं और वो भी किसी एकाध कोई समझ में आता होगा, क्योंकि संस्कृत बोलचाल की भाषा तो है नहीं, और सत्संग भी कभी 6 महीने में साल में एकाध बार जाता होगा वो, तो बाकी टाइम में। तो बाबा कहते हैं बच्चे शुभ सोचने वाले, सारी दुनिया के शुभ चिंतक केवल आप ही हो, शुभ चिंतक मणियां आप ही हो, तो आपको सबके लिए निस्वार्थ भाव से शुभ चिंतन करना है। और बाबा ने हम बच्चों को लास्ट दिन का लास्ट क्लोजिंग के लिए कौन सी श्रीमत दी है, एक बहुत अच्छी बाबा की श्रीमत है कि सोने से पहले कोई भी आपस में बात न करे, कम से कम आधा घंटा पहले बातें बंद हो जानी चाहिए। एक बार बाबा ने कहा था कि जो बच्चे बाबा के इस फरमान का पालन नहीं करते उनके अरमान रह जाते हैं, फरमान पूरा नहीं किया तो अरमान पूरे नहीं होंगे। और बाबा ने ये भी कहा था कि कई कौन से अरमान पूरे नहीं होंगे, कि भाई मुझे अच्छी नींद आए, या मुझे स्वप्न में बाबा दिखे, या स्वप्न में कोई अच्छा दृश्य दिखे, वो अरमान अरमान ही रह जाता है, क्योंकि बाबा का फरमान नहीं माना। बाबा का फरमान क्या है, सोने से आधा घंटे पहले बातें बंद कर दो। बातें करते करते नींद नहीं करनी, याद करते करते नींद करनी है। नींद से पहले बाबा की याद में बैठना है। आधा घंटा बैठो, 15 मिनट बैठो, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो अवश्य बैठो। बातों के प्रभाव को खत्म करके उसके बाद डिटैच हो करके, क्योंकि सुबह अवतरित होना है ना। सुबह आप अवतरित कैसे होंगे? आप देह में सोएंगे तो सुबह देह में ही तो जागेंगे ना। और आप देह से परे हो करके जाएंगे तो फिर आप सुबह अवतरित होंगे। तो अमृत वेला वास्तव में सुबह शुरू नहीं होता, अमृत वेला वास्तव में रात को शुरू होता है। अंत मति सो गति, अंतिम संकल्प जैसा होता है, सुबह की पहली स्थिति भी वैसी ही होती है। तो हमारा अंतिम संकल्प क्या हो? डिटैच। जैसे गाड़ी यहाँ पड़ी है और उसका ड्राइवर अपने घर चला गया, परमधाम हमारा घर है ना, और गाड़ी की गैरेज तो ये, इतनी बड़ी दुनिया, गाड़ियों की गैरेज है तो ये और क्या है, लेकिन हमारा असली घर कौन सा है? वो तो परमधाम है। वहाँ गए, फिर सुबह होगी तो क्या करेंगे? फिर इसकी इसको यूज करेंगे, आकर के इसमें बैठेंगे। रात को काय को इसमें बैठे? कोई ड्राइवर गाड़ी में ही सोए तो उसको कैसी महसूसता होती होगी? उसको तो लगेगा दिन में भी इसको चलाता हूँ, रात को भी मैं तो बंध गया इसके साथ, ये तो बंधन है, इसलिए वो बंधना नहीं चाहता। तो ये शरीर हमारे लिए बंधन थोड़े है, ये तो सेवा का साधन है। तो जब जरूरत होगी तभी तो इसमें बैठेंगे ना, या बिना जरूरत भी बैठे रहेंगे? तो जरूरत कर्म के समय इसकी है। जब कर्म नहीं करना तो इसकी आवश्यकता नहीं है, इससे अलग हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर कर्म की जरूरत पड़े फिर इसको धारण कर लीजिए। तो ये बाबा की क्लोजिंग के लिए श्रीमत है। बाबा को याद करके डिटैच होकर के विश्रामी बनेंगे तो क्या होगा? सारा दिन की हमारी जो स्थिति होगी वो कैसी हो जाएगी? अगर ऐसे हम स्मृति स्वरूप बने, हमारे सामने कोई भी आत्मा आएगी उसको क्या लगेगा? उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उसको हमसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो हमसे लेना चाहती। हम सब कौन है? कामधेनु। शास्त्रों में कामधेनु का जिक्र आता है ना। कामधेनु एक ऐसी गाय थी कपिल मुनि के पास, उसने कहा इतने अतिथि आ रही हैं, इतना भोजन बना दो, बन गया, इतना फला मिष्ठान दे दो, वो मिल गया, कामना पूरी करने वाली धेनु। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में वो आप हो, और आपको देख करके जो भी कोई कामना करेगा, मुझे शांति मिले, मेरा मन स्थिर हो जाए, मुझे सुख मिले, मुझे जीवन का लक्ष्य मिल जाए, वो जो संकल्प करेगा तो कामधेनु क्या करेगी? तथास्तु, पूरा हो जाए। लेकिन कामधेनु वही बनेंगे जो सारा दिन श्रेष्ठ सोमानों की स्मृति में रहेंगे। ओम शांति।
Thank you.